आज हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद से पढ़ रहे हैं, छठे स्कंद का आठवां अध्याय, सिक्स कैंटो एट चैप्टर। अगर आपके मोबाइल में है तो आप कर सकते हैं, और श्लोक नंबर है 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्वंतरि भगवान पातु पत्याद द्वंद्वात् भयाद् ऋषभो निरजितात्मा। यज्ञश्च लोका तवता जनन्ता। बालो गणात् क्रोधवशाद् इन्द्रः। धन्वंतरी वैद्यराज धन्वंतरी भगवान श्री भगवान पातु मेरी रक्षा करें अपथ्यात् स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुएं जैसे मांस और मादक द्रव्य से, द्वंद्वात् द्विधा से, भयात् भय से, ऋषभ श्री ऋषभ देव निर्जित आत्मा मन और स्वयं को वश में रखने वाला, यज्ञ यज्ञ च तथा लोकात् जनता के अपिष्ट से, अवतात् रक्षा करें, जन अंततात् अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न भयानक परिस्थितियों से, बला भगवान बलराम गणात् गणों से, क्रोधवशात् क्रुद्ध सर्पों से, अहिंद्र शेषनाग के रूप में भगवान बलराम। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। अपने अंतकरण तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले ऋषभ देव सर्दी और गर्मी के दैत्य से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें। भगवान यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश और हानि से मेरी रक्षा करें, और शेष रूप भगवान बलराम जी मुझे ईर्ष्यालु सांपों से बचाएं। हरे कृष्ण। ये पूरा इंश्योरेंस आ रहा है सब अलग अलग चीजों का। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में रहने के लिए मनुष्य को अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, जिसका उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। उदाहरण के लिए अवांछित भोजन कुपथ्य से स्वास्थ्य को डर रहता है, अतः ऐसे भोजन को त्याग कर देना चाहिए। इस मामले में धन्वंतरी हमारी रक्षा करें, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के स्वरूप में है, अतः वे चाहें तो हमें अन्य जीवों के उपद्रव से अधिभौतिक उपद्रवों से बचा सकते हैं। भगवान बलराम जी शेष के अवतार हैं, अतः वे चाहें तो हमें क्रोधित सांपों से अथवा द्वेषपूर्ण व्यक्ति से बचा सकते हैं जो हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं। ओम अज्ञान्ति मिरन्दस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्री रूपाम सागर जाताम सहगना रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर से बोली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम सब भक्तों का स्वागत करते हैं। अभी कल से ही कार्तिक महीना शुरू होने वाला है और इसीलिए भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा है। वृंदावन धाम में आना कभी भी बहुत अच्छा है, पावन करने वाला है हमारे हृदय को, लेकिन अगर हम कार्तिक के महीने में आते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप सब आए, शायद कल तो कार्तिक शुरू हो ही रहे, आशा आप लोग रहोगे कल तक और 12 नवंबर तक आप रुके रहोगे। हरे कृष्ण। आपको पता होगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन के एक सेल चल रहा था पिछले सप्ताह, है ना, बिग बिलियन माया सेल, जिसमें करोड़ों रुपए ऐसे ही व्यर्थ में खर्च किए जाते हैं। अभी एक नया सेल शुरू है, बिग बिलियन कार्तिक सेल, इसमें हरि नाम की बिक्री हो रही है सस्ते दाम में, श्रीमती राधा रानी की कृपा मिल रही है। तो जैसे लोग जब सीजन में जब कोई डिस्काउंट होता है तो कोई चीज़ को खरीदी करते हैं कम कीमत में, वैसे अभी यहाँ पर कृष्ण भक्ति डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं श्रीमती राधा रानी कृपा से, 100% डिस्काउंट। बस आपको लॉग इन करना है www.krishnabalram.com पे और जितना आपको डाउनलोड करना है सब फ्री है, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि आपको ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करना। वृंदावन धाम में जब भी हमें आने का अवसर मिले तो जानना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की टिकट बुक होती है 4 महीने पहले, लेकिन वो आ नहीं पाते। कई लोग का टिकट नहीं होता फिर भी आ जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए, कितने लोग हैं जो कि ट्रेन से आए, हाथ ऊपर करें, कितने जो हैं प्लेन से आए, एरोप्लेन से, कितने हैं जो कार से आए, आप सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप वृंदावन में आते हैं कार से ट्रेन से नहीं आ सकते, सिर्फ राधा रानी की कृपा से आए। तो राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम आए हैं, उनकी कृपा से आए, लेकिन आने के बाद भी अब इसका पूरा फायदा उठाना है। अगर हम वृंदावन में आके बस दिन भर लस्सी पीते रहें और गोविंदास में पिज्जा खाते रहें तो भक्ति बहुत जल्दी प्रगति हो जाएगी। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो भी आप पी सकते हैं खा सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो वृंदावन धाम का जो स्टे है वो भक्ति के लिए ज़्यादा अनुकूल रहे। हम ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करें, ज़्यादा कृष्णा बुक पढ़ें या भगवत भागवतम पढ़ें, चैतन्य चरितामृत, अपने मन को भगवान के चरणों में केंद्रित रखें। जैसे अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त रहे, वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते। सबै मन कृष्ण पदारविंद वाचा से वैकुंठ गुणानुवर, वो आँखों से भगवान के विग्रह के दर्शन करते, कानों से हरि कथा सुनते, जिह्वा से भगवान का नाम लेते, जिह्वा से प्रसाद लेते, इस तरह अपनी चेतना को पूर्ण रूप से भगवान में मग्न रखते। हमें प्रयास करना चाहिए कि एक महीने जो है 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक हम और कोई चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लें, बस भगवान की कथा सुनना। हम आए हैं वृंदावन में इसीलिए आए हैं, भगवान की कथाओं को सुनना, नाम जप करना, यमुना स्नान करना, गोवर्धन परिक्रमा करना, और समय थोड़ा बच जाए तो प्रसाद लेना। ज़्यादा आहार निद्रा कम से कम करके श्रवण कीर्तन ज़्यादा करें। ऑफकोर्स आप में से कई हैं जो कुछ दिनों के लिए आए हैं, हो सकता है वापस चले जाएं और फिर वापस लौट कर आएँ। जितने भी दिन राधा रानी की कृपा से आने को मिले वो बड़ा आशीर्वाद मानना चाहिए। मथुरा महात्म्य में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ब्रजमंडल में कोई 3 दिन भी रुकता है तो उसको राधा रानी की कृपा मिल सकती है। तो कृपा कैसे मिलती है? सिर्फ आने से नहीं, कृपा मिलती है मांगने से। जैसे कोई व्यक्ति, अगर हम समझो भिक्षा मांगने जा रहे हैं, तो किसी व्यक्ति से हम भीख मांगने जा रहे हैं, तो दरवाजे पर अगर हम खड़े रहें, दरवाजा बंद है, तो हो सकता है हम 4 घंटे खड़े रहें, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर आप किसी के घर में भिक्षा मांगने जा रहे हैं तो क्या करना होगा? खोलो हरि बोल, प्लीज यू हैव टू नॉक, आपको खटखटाना होगा, तब दरवाजा खुलेगा और आपको मांगना होगा। तो चैंटिंग करना मतलब दरवाजा खटखटा रहे, हमें 16 बार खटखटाना है एटलीस्ट, कम से कम, हो सके तो ज़्यादा भी। आप बोलोगे प्रभु जी हम तो हर साल करते आ रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, ये राधा रानी कृपा कब मिलेगी? आप तो हर साल ऐसे ही बोलते हो, कार्तिक बीत जाता है और हम बस चले जाते हैं। नहीं, हर समय आप आ रहे हो, कृपा मिलती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, बैलेंस बढ़ रहा है, और जब वो पूरा भर जाएगा तब आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। जैसे जब बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे पास एक बॉक्स था जिसके अंदर जो कोई व्यक्ति को पैसा देता वो संभाल के रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गला, यस, जिसके पास था उसको याद होगा, यस, आपकी बाल्य लीला है ना। मुझे याद है उस समय 20 पैसे का भी सिक्का होता था, आपको याद है 20 पैसे का गोल्डन कॉइन, 50 पैसे, आज तो 20 पैसे अगर 2 रुपये भिखारी को दिए तो भिखारी को बेइज्जती लगेगी। उसमें 20 पैसे 50 पैसे थे, पूरे साल करने के बाद एक दिन बॉक्स भर गया तो खोला तो उसमें 250 रुपये, हरी बोल वाह। उस समय के 250 रुपये आज के 25,000 रुपये के बराबर है। उस समय जैसे जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छा माता जी थोड़ा सा और आगे आ जाएं, पीछे थोड़ा जगह की कमी है, प्रभु जी भी जहाँ भी हैं वहाँ से 2 फीट आगे बढ़ जाएं। आगे आने में एक ही खतरा है कि सो नहीं सकते, और भी थोड़ा आगे आ जाते हैं। तो थोड़ा और आगे पीछे और लास्ट, कई लोग बाहर खड़े जगह। तो जब भी हम भक्ति का कोई कार्य करते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। जैसे हमने एक मंगल आरती अटेंड की, कल कार्तिक की पहली मंगल आरती, शरद पूर्णिमा कल है, तो एक दिन मंगल आरती अटेंड की तो आपका डिपॉजिट थोड़ा बढ़ गया, एक भागवतम अटेंड किया और बैलेंस बढ़ गया, एक और अगर जागते हुए किया तो और भी ज़्यादा फलाभ हो गया। कई लोग सेमी स्लीपिंग भागवत अटेंड करते हैं, मतलब आधा जागना आधा सोना, और जय बोले प्रभुपाद की जय, यानी उत्सुकता से भागवत अटेंड करना। उत्सुकता से नाम लेना, नाम ग्रहण में ऐसी भावना होना कि कृष्ण साक्षात प्रकट हो रहे हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये कृष्ण जो है अपने नाम के रूप में है, उनकी सारी कृपा नाम के रूप में है, उस भावना से जप करना। जो भी आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन में अगर आप कर रहे हैं तो 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। मतलब आप वृंदावन में एक माला करते हैं और बंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अमेरिका, लंदन, ये सब जो माया की नगरी हैं, यहाँ पर आप 1000 माला करो और वृंदावन में एक माला करो तो बराबर। और वृंदावन में अगर कार्तिक के महीने में किया तो उसके भी 1000 गुना ज्यादा लाभ मिला। इसीलिए कई लोग कार्तिक में व्रत रखते हैं कि मैं ज्यादा जप करूंगा, 25 माला, 32 माला, जितना भी हो सके अपनी कैपेसिटी के अनुसार भागवत पढ़ना ज्यादा से ज्यादा, हो सके तो प्रसाद कम लेना। हम लोग को आदत है दिन में 3 बार लेने की और बीच में थोड़ा सा हल्का फुल्का और है ना, उसे कम करके सिर्फ, कई लोग दिन में 1 ही बार लेते हैं, कई लोग 2 बार लेते हैं, जितना हो सके आहार निद्रा कम और श्रवण कीर्तन ज्यादा। तो इस तरह से आप जो भी भक्ति की क्रिया कर रहे हैं वो आपका स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में भर रहा है। आपने एक बार कोई मंदिर में कुछ दान किया स्पेशली कार्तिक के महीने में, उसका भी 1000 गुना ज्यादा लाभ मिले। आप दीप दान करते हैं, कल से शुरू होगा कार्तिक का दीप दान, तो दीप दान, एक बार दीप दान करना 1000 करोड़ों गाय देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राधा श्याम सुंदर को एक दीप अर्पण करना, वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इतने सारे आज सुबह अनाउंसमेंट कर रहे थे जनार्दन महाराज की, वॉलंटियर्स की जरूरत है प्रसाद के लिए, तो ये सेवा, हर यात्री जो आ रहे हैं भगवान के गेस्ट, भगवान के अतिथि आ रहे हैं और मैं उनका नौकर हूँ, ये सोच के हर एक यात्री को सेवा करना, प्रसाद सेवा करना या जो भी चीज़ की आवश्यकता। हमें अपने आप को सब वैष्णवों का सेवक मानना चाहिए, वैष्णव या वैष्णवी दोनों, क्योंकि ये जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का सरल तरीका है। भगवान चैतन्य महाप्रभु से एक बार किसी भक्त ने पूछा कि हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारे लिए प्रगति करने के लिए क्या उपाय है, हाउ कैन वी मेक रैपिड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, जल्दी प्रगति करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने क्या जवाब दिया, आप में से कौन महात्मा है जो इसका जवाब देंगे। महाप्रभु ने बोला 2 चीजें करो। क्या 2 चीजें? वैष्णवों की सेवा करो और हरि नाम लो, चैंट हरे कृष्णा एंड सर्व द डिवोटीज। वैष्णवों की सेवा करो और उत्साह पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले बार भक्तों ने प्रश्न पूछा कि आप बोल रहे वैष्णव की सेवा करना है, तो वैष्णव के माने चीनी ब, हाउ डू आई नो हु इज वैष्णव, वैष्णव कौन है कैसे मालूम पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या जवाब दिया, जिसके माथे पे तिलक है वो वैष्णव है, करेक्ट। जिसने एक बार भी हरे कृष्णा मंत्र बोला है वो वैष्णव है, ये जवाब परम वैष्णव दे रहे हैं। यस, जिसने एक बार भी हरि नाम लिया। अगले साल फिर भक्त आए और पूछा कि वैष्णव का डेफिनेशन क्या है, तो महाप्रभु बोले जिसने 24 घंटे जो भगवान का नाम ले रहे वो वैष्णव है। 24 घंटे, 24 आवर्स। तीसरे साल फिर से प्रश्न पूछा कि वैष्णव कौन है, तो इस बार क्या बोले भगवान, जिसको देखते ही हमें प्रेरणा मिलती है हरि नाम लेने के लिए, वो वैष्णव। तो 3 वैष्णव, एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक उत्तम अधिकारी। ये कहानी सुनने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं इस्कॉन में 30 साल से हूँ फुल टाइम, 87 में ज्वाइन किया, अभी मैं मध्यम अधिकारी तो हो ही गया हूँगा, वैसे हूँ तो उत्तम अधिकारी, लेकिन बोलना नहीं चाहिए अपने आप को मैं मध्यम अधिकारी हो सकता। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि मध्यम अधिकारी का मतलब जो 24 घंटे नाम ले रहे, इसका मतलब मैं अभी भी कनिष्ठ स्तर पे हूँ, अभी भी बहुत आगे बढ़ना है। तो वैष्णव की सेवा करना कार्तिक महीने में इतना महत्वपूर्ण है। ये राधा रानी का महीना है, दामोदर महीना। राधा रानी को सबसे प्रिय है ये कार्तिक महीना, और जो राधा रानी को प्रिय है वो कृष्ण को प्रिय है। इसलिए राधा श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर हैं। कृपा मिलती है न केवल मांगने से, न मांगने से ज़्यादा ऊंचा स्टेज है पुकारना, और पुकारने से ऊंचा स्टेज है रोना। मांगना मतलब कृपा करो, पुकारना मतलब कृपा करो प्रभु कृपा करो, और रोना मतलब रो रो के आंखों में आंसू भर कर दया करो। करुणा करु माई करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणा करु माई करुणा भरिते, बोलो करुणा करु, करुणा करु माई करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। ये किसका गुणगान कर रहे हैं? राधा रानी का। वृंदावन में आना, वृंदावन टू कम टू वृंदावन मीन्स टेक शेल्टर ऑफ वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी का आश्रय ना। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधा रानी की कृपा मांगने के लिए मैं, वी आर कम यस एज बेगर्स, हम वृंदावन में धाम में आए हैं भिक्षुक के रूप में, हाथ जोड़ के गुरु के भगवान के चरणों में भीख मांग रहे हैं। हे राधे, हे वृंदावनेश्वरी, हे श्याम सुंदर, हे गोपीनाथ, हे दामोदर, मेरे पर दया करो। जन्म जन्म से मैं भटक रहा हूँ आपको भूलने के कारण, अब मैं आपके शरण में। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण। ये भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ आश्रम में, भक्ति विनोद ठाकुर इतने सुंदर सुंदर भजन लिख रहे हैं। कई बार सोचते हैं गृहस्थ आश्रम मतलब खाली भोजन के लिए, गृहस्थ आश्रम में भी रहकर कोई सरल सिंसियरली भक्ति करता है तो बहुत प्रगति कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े परिवार में 10 बच्चे हैं और बड़े मैजिस्ट्रेट हैं, लेकिन इतने सुंदर भजन लिख रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेरे निवेदन को सुनो, मैं विषयी हूँ दुर्जन हूँ, मेरा कोई और उपाय नहीं। गोपीनाथ अमर भरोसा तुम्हें तोमार चरण लोई नो शरण तोमार किंकर आमी। बोले हे गोपीनाथ मैं आपके चरणों में गिर के निवेदन करता, आपके चरणों में गिर के भीख मांगता, मेरे पर दया कर। आपने इतने सारे असुरों का उद्धार किया, मेरे को भी जल्दी से स्वीकार करो, मेरे लिए क्यों देर कर रहे, पुकारना चाहिए करुणा कोई, दया करो कृपा करो करुणा करो। हे राधे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण, हे दयालु, प्लीज प्लीज। जब ऐसे पुकारते 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 जब रोने का स्टेज आता है तब भगवान कृपा करते। छोटा बच्चा जब रोता है तो थोड़ा सा रोए तो माँ उसको गोद में नहीं उठाएगी, लेकिन जब बहुत बोलने पे माता कोशिश करती है उसको कोई मिठाई दे दिया शांत हो जाए, या कोई खिलौना दे दिया, तो माँ सोचे चलो मैं अपने दूसरे काम कर लूँ। लेकिन बच्चा बोलता है नहीं मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए। जैसे बोलते न धनम न जन्म न धनंतर, न खिलौना हम न मिठाई हम न, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ की गोद में जाना है। ऐसे जब हम पुकारते हैं मुझे राधा और कृष्ण का संग चाहिए, वही मेरे प्राण धन है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जनमे मराने गति आर नाही मोर। बोले मेरे को जन्म और मृत्यु में और कुछ नहीं है, मैं राधा और कृष्ण ही सब कुछ, राधा श्याम सुंदरी मेरे सर्वस्व है, उनके चरणों की भक्ति मुझे करनी। सब आचार्य एक ही चीज बता रहे हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर का भजन आपने गाया भी, और ये नरोत्तम दास ठाकुर का दूसरा भजन है। कौन सा भजन है? हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत, हा हा करुणा करो ए बार नरोतम दास कहे नथली हो रंग पाए तुम बिन के अच्छे अमार इसका अर्थ है हा हा प्रभु नंद सूत हे नंद नंदन हे कृष्ण वृषभानु सूत वृषभानु सूता कौन है राधा करुणा करो एक बार दया करो भगवान की एक कृपा दृष्टि पड़ जाए बस जीवन से नरोत्तम दास कहे नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं नाथेली हो रंग पाए मेरे को अपने चरणों से दूर मत करो तोमा बिना के आछे आमार आपके सिवाय मेरा कोई नहीं सिवाय भगवान के सिवाय गुरु के हमारा कोई मित्र नहीं मित्र वही है जो भगवान के करीब ले आए वही रियल मित्र है। यहाँ पे ब्रजमंडल परिक्रमा में गोवर्धन परिक्रमा करते हैं आप में से कईयों ने किया गोवर्धन परिक्रमा तो गोवर्धन परिक्रमा जब राधा कुंड के पास पहुंचते हैं राधा कुंड से थोड़ी पहले एक जगह है जिसका नाम है शिव खोर वहां की कथा बताई जाती है कि वहां पर एक लोमड़ी थी शी जैकल सी आर तो इधर उधर भाग रही थी और छोटे बच्चे जब वो शरारती थे वो ऐसे पत्थर फेंक रहे थे उसके ऊपर वो चोट से खून खून हो रहा था अपने को बचाने के लिए इधर जा रही उधर जा रही जहां जा रही है पत्थर पड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए उस सीआरनी ने अपने आप को एक गड्ढे के अंदर छिपा दिया होल जमीन के अंदर छिप के ये बच्चे बहुत शैतान थे उन्होंने चारों ओर से आग लगा दी और अब उसके लिए कोई भागने का उपाय नहीं अगर वो अंदर रहते हैं तो जल के भस्म हो जाएंगे अब बाहर आते हैं तो पत्थरों के चोट से मृत्यु हो जाएगी अब कहाँ जाएं क्या करें तब उसको याद आया अरे राधा रानी का गांव पास में है राधा कुंड पास में है मैं राधा रानी को पुकारूं तो जरूर मदद करेंगे दिनों पे पीड़ित पर भगवान जल्दी कृपा करते हैं इसलिए उन्होंने जोर से पुकारा राधे राधे आपकी आवाज से लग रहा है कि 3 दिन से निर्जला उपवास चल रहा है अभी चिंता मत करिए बस 15-15 घंटे में प्रसाद शुरू होने वाले हैं इस आशा के साथ जोर से बोलिए राधे 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 जब राधा रानी ने आवाज सुनी राधा रानी तुरंत ललिता सखी को बुलाई राधा रानी के सबसे करीब की सखी हैं ललिता सखी ललिता ललिता जाओ देखो बलराम हॉल से कोई मुझे बुला देखो कोई मुझे याद कर रहा है ललिता सखी गए उसने देखा वो बहुत पीड़ित है सब जगह पे आग लग रही है अपनी शक्ति से ललिता देवी ने उस अग्नि को बुझा दिया और बच्चों को दूर भगा दिया और बड़े प्रेम से उस विपत्ति में कठिनाई में जो लोमड़ी है उसको बाहर निकाला और उसको श्रीमती राधा रानी के चरणों में स्पर्श करवाया राधा के चरणों के नखों की ज्योति की वंदना बड़े बड़े देवता भी करते हैं ब्रह्मा शिव नारद शुकदेव ये भी राधा रानी के चरणों पर ध्यान करते हैं स्वयं कृष्ण भी अपने सुंदर मस्तक को श्रीमती राधिका के चरणों में झुका देते हैं कौन है जो उनके चरणों की महिमा को समझ सकता है और जब राधा रानी के दिव्य चरण उस पीड़ित सियारनी लोमड़ी के ऊपर पड़े तो उसका रूप बदल गया उसका फॉर्म बदल गया वही गोपी बन गई सुंदर गोपी और भगवान की लीला में मग्न हो ये कहानी का तात्पर्य क्या है ये लोमड़ी कौन है सियारनी कौन है मैं हूं आप हैं और ये पत्थर क्या है, ये दुख खा रहे हैं, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक, जैसे आज के श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कितने सारे विपत्ति आते हैं। आज के श्लोक में बताया गया है कि कैसे सांपों से रक्षा करने के लिए भगवान बलराम जी हैं, धन्वंतरी हैं, अवांछित खाद्य पदार्थ से बचाने के लिए, ऋषभ देव हैं सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए। तो ये सब पत्थर की तरह ये पड़ रहे हैं, सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान, हम सब स्थिति में बहुत पीड़ित हैं। ये तीन तापों से हम पीड़ित हैं, आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक। अधिदैविक यानी बहुत बाढ़ आ जाना, जैसे इस साल बंबई में, पुणे में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बहुत बरसात हो गई, तो इससे लोग बहुत पीड़ित हो गए। और यहाँ दिल्ली साइड में बरसात बहुत कम हुई, अभी हो रही है, पहले बहुत कम हुई। तो एक प्रकार का दुख है अधिदैविक। कभी तूफान आना, उड़ीसा में कुछ महीने पहले तूफान आया था, सब पीड़ा है अधिदैविक। और आध्यात्मिक का मतलब स्वयं के शरीर की बीमारियाँ और मन की बीमारियाँ। आजकल मन की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ गए हैं पूरे विश्व में। और तीसरे अधिभौतिक, दूसरे प्राणी तकलीफ देते हैं। यहाँ पर सांप बचाए गए, बिच्छू, कई बार मच्छर भी बहुत परेशान करते। आपको सोने, आप सोने जा रहे हैं, 15-20 अतिथि आ जाते हैं रात को मिलने के लिए, हरी बोल, आपके बिस्तर पर ही, आपके संग के बिना विरह सहन नहीं हो रहा। और आप ऑल आउट लगाते हैं और वो ऑल इन हो जाते हैं, आप गुड नाइट लगाते हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इतने परेशान। तो सब ये सब विपत्ति पत्थर की तरह है। लेकिन जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं तो राधा रानी ललिता को भेजते हैं। ललिता मतलब गुरुदेव, ललिता के प्रतिनिधि गुरुदेव है, रूप गोस्वामी है। तो गुरु और वैष्णव आकर हमको रास्ता दिखाते हैं। वो रास्ता क्या है, गड्ढे से निकलने का, हरि नाम लेना। संसार दावान ललि डलो कांत्रणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानुभस्य वंदे गुरु श्री चरण। इसका पहले लाइन का अर्थ क्या है, संसार दावानल, हम खुशी खुशी गा रहे हैं, इसका मीनिंग सोचिए कि संसार एक अग्नि के समान। मैं कुछ दो हफ्ते पहले बेंगलोर में था और वहाँ पर एक बैंक में आग लग गई, UCO बैंक में। इतने परेशान हो गए लोग, बिल्डिंग से छलांग लगा के अपने आप को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा मटीरियल वर्ल्ड एक धधकता हुआ अग्नि है, हम सब जल रहे हैं। अगर समझो आप एक बिल्डिंग में हो जहाँ पर आप जल रहे हो, तो वहाँ पर कौन सा कमरा है अच्छा है, AC या non-AC, कौन सा कमरा पसंद करेंगे? रोज बोले AC अच्छा है, नहीं गर्मी कम लगेगी, ठंडे ठंडे जल जाएंगे, कौन सा कमरा अच्छा है? यस, बाहर निकलना है, कमरे में रहना नहीं है। ये मत सोचिए कि मेरी भौतिक चीज सुधर जाएगी तभी मैं सुखी होऊंगा। तो दुनिया में सब चलता ही रहेगा, आप कितना भी प्रयास करो ये दुनिया का स्वभाव नहीं बदल सकते। जब मैन्युफैक्चरर ने बताया है कि ये डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें प्रॉब्लम आना ही है, तो हम क्या कर सकते। मैन्युफैक्चरर कृष्ण बोल रहे हैं दुखालय है, एक ही उपाय है कि इस अग्नि से बाहर निकलना। कैसे? गुरु कृपा, प्राप्तस्य कल्याण गुणानुभस्य वंदे गुरु श्री चरणार। तो गुरु की कृपा बरसात की तरह, जब जंगल में आग लगती है तो उसको फायर ब्रिगेड से नहीं बुझाया जा सकता। जंगल में आग लगी, आप एक बकेट पानी डालो, एक पूरा ड्रम डाल दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बहुत जोर से बादल गरजते हैं, बरसात होती है, तब अग्निशान। तो गुरु की कृपा क्या है, वो उस बरसात के समान है। और बरसात क्या है, हरि नाम। जब गुरु कथा सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, और जब हरि नाम हम लेते हैं, तो अपने आप सारे विपत्तियां दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, और भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए इस कार्तिक के महीने में कि हम राधा रानी की कृपा के लिए पुकारें। कितने सालों से हम जप कर रहे हैं लेकिन कभी हमारे आंखों में आंसू नहीं आते, बल्कि नींद। आज तो मैं जप कर रहा था, रात को थोड़ा लेट हो गया कुछ बहाने से, और नींद आ रही जप में। मैं अपने आप को डांट रहा था कि यही वही नाम है जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि लेकर आनंद से नित्य करते हैं, और वही नाम को लेकर हम आंखों बंद करके सो जाते हैं। कितना मूर्ख हूँ मैं कि नाम की महिमा को नहीं समझ पा रहा। हीरे को त्याग करके कांच के टुकड़े एकत्रित कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाते हीरा है हरि नाम, उसको हम कांच समझ लेते हैं, और भौतिक दुनिया कांच के समान है, उसको हम हीरा मान लेते हैं। हम कितना संघर्ष करते हैं धन प्राप्ति के लिए, कितना संघर्ष करते हैं। कोई भी आप जॉब करो, अच्छा जॉब हो खराब जॉब, मतलब ईमानदारी का जॉब, इवन धोखा करने के लिए चोरी करने के लिए भी संघर्ष होता है। आसान नहीं है चोर बनना भी। आप में से किसी को अनुभव है उसका? अगर है तो हाथ ऊपर मत करना। लेकिन जब चोर कोई बैंक में चोरी करने जाता है, उसको पता होता है पकड़ा जाऊंगा तो मेरे को मृत्यु दंड हो सकता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि पैसे के लिए। जो लोग आर्मी में एयरफोर्स में जॉब करते हैं उनको पता होता है कभी बॉर्डर पे लड़ाई करने तो जीवन में रिस्क होता है, लेकिन वो करते हैं क्योंकि धन कमाने के लिए। तो ये भौतिक चीजों के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है, और जो चीज आसानी से मिल रही है हरि नाम, उसको हम अवहेलना कर देते हैं। हम सोचते हैं भगवान का नाम है फिर कभी लिया जा सकता, ये रत्न है। अगर मुझे थोड़े कम भी पैसे कमाने पड़े, कम मिले कोई बात नहीं, मैं समय बचा के ज्यादा हरि नाम लूँ। ये महीने में कार्तिक के महीने, जैसे आज के तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं धन्वंतरी के बारे में, भगवान धन्वंतरी ये भगवान के अवतारों में से एक है। जो आयुर्वेद में धन्वंतरी की पूजा की जाती, धन्वंतरी भगवान दवाइयाँ देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि धन्वंतरी अवतार मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें, क्योंकि डाइट का बहुत प्रभाव होता है आपके स्वास्थ्य के ऊपर। जैसा भोजन करते हैं वैसे आपका स्वास्थ्य होता है, वैसा ही मन होता है। चैतन्य महाप्रभु से पूछा एक भक्त ने कि एक साधु का व्यवहार कैसे होना चाहिए जिसने संन्यास लिया है, या जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी शुद्ध रहना चाहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रश्न पूछा कि क्या व्यवहार होना चाहिए भक्त का। तो महाप्रभु ने क्या जवाब दिया, भाल न खाइब, मतलब बहुत चटपटा नमक मिर्च से भरा हुआ ऐसा भोजन करना, करेक्ट कि नहीं करना? ऐसा नहीं करना, सिंपल। हमारे जैसे कृष्णा हॉल में प्रसाद बहुत सिंपल होता है, बस राइस दाल थोड़ा खिचड़ी और हरी बोल, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, सिंपल सिंपल लाइफ। अवांछित, आज के तात्पर्य में क्या, अवांछित खाद्य पदार्थों से मुझे दूर रखें। जनरली जो स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं ना, वही शरीर में प्रॉब्लम भी करते हैं। जैसे आप कोई है ना टिक्की खाओ, क्या बोलते हैं गोलगप्पे खाओ, और ज़्यादा पकौड़ा खाओ, खीर ज़्यादा लो, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ऐसी चीज़ें खाने से दो फायदे होते हैं कि पेट खराब होता है और डॉक्टरों का बिल भरता है, और डॉक्टरों को भी सेवा मिलती है, तीन फायदे होते हैं, और आयु कम हो जाती है, चार फायदे हैं। तो अगर आपको लंबी आयु चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो आज के तात्पर्य में बताया गया कि अवांछित चीज़ों को कम खाना। सिंपल वैष्णव भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब उसको और तला के और पका के, और मिर्च, अगर मिर्च डोनेशन में भी आ जाए, ज़रूरी नहीं है डालना ही है, प्रभु जी डोनेशन में आ गया तो मैं ज़्यादा डाल दूँ, मैं सिंपल। जीवा का दास नहीं बनना, जीवेर लालसा जे इति उती दाए शिष्णोदर परायन कृष्ण नाहीं। जो जीवा की लालसा मिल जाता है, कई बार लोग प्रोग्राम सोचते हैं ये प्रोग्राम में जाना चाहिए, वहाँ पे बाद में बहुत गाजर हलवा मिलने वाला है, प्रोग्राम के एंड में 10 मिनट पहले पहुँचना चाहिए प्रसाद से पहले, ये प्रोग्राम जाके फायदा ही नहीं है, वही बस रुखिया सो की रोटी मिलना है, और यहाँ तो खाली खिचड़ी मिलना है नहीं। तो सत्संग के लिए जा रहे हैं कि हम भोजन के लिए जा रहे हैं, भजन या भोजन? भजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट। शरीर का निर्वाह करने के लिए कुछ भोजन कर लेना, चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते हैं कि पेड़ की तरह बन जाना। पेड़ क्या करता है, पेड़ मांगता नहीं है, समझो कोई पेड़ को प्यास भी लगी है, पानी नहीं मिला, वो किसी को बोलेगा नहीं ट्यूबवेल से पानी ले आओ मेरे लिए, किसी ने अपनी इच्छा से आकर ऐसे एक गिलास पानी डाल दिया तो पेड़ खुश है, चलो और नहीं डाले तो भी कोई बात। तो साधु को, साधु मतलब खाली भगवे में नहीं, आप सब भी साधु हो, जो भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो साधु हैं। साधु को कैसा बनना चाहिए कि जो आसानी से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, कोई अपना मेनू नहीं, जो मिल जाए अच्छा, अभी हम गए प्रसाद हॉल में, जो मिल गया वो अच्छा है, उससे भी ऊंचा है कि जाना ही नहीं, अपने आप को इलाके दे दे तो खाना, लेकिन वो बहुत ऊंचा स्टेज है। माधवेंद्रपुरी का क्या श्रेष्ठ है, वो मांगते भी नहीं थे, वो घूमते रहते थे, भूखे हो तो मांगते नहीं। फिर कोई आके बोलता बाबा बाबा ये लो दूध पी लो, ये लो थोड़ा सा सब्जी खा लो, रोटी खा लो, तो खा लेते। इसको बोलते हैं अजगर वृत्ति। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। जब मैं इस्कॉन में पहले आया था 1987 में, तो मैंने ट्राई किया था बम्बई में ये कि मैं अजगर वृत्ति का पालन करूँगा। मंदिर में रहता था, प्रसाद हॉल नहीं जाऊँगा, बस मैं अपना सेवा कर रहा था। फिर मैं एक दिन किया, दूसरे दिन किया, और कोई लेके ही नहीं आया कुछ। अरे भाई क्या हो गया। फिर तीसरे दिन मैं दौड़ के, जैसे ही डीटीज का महाप्रसाद आया, सब दो चार परोठा रोटी खा लिया। क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है अजगर वृत्ति। हमारे लिए अच्छा क्या है कि जब 9 बजते ही प्रसाद हाल में पहुंच जाना, और जो मिल जाए वो कम से कम मात्रा में लेना। अगर आपको लगता है कि आपको 4 खाना है कि 2 खाना है, मन में चल रहा है तो 2 रोटी खा लो, खाइब कि ना खाइब, ना खाइब थोड़ा कम खा लेना। और जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं जितना आपको भूख लग रही है उसका आधा खा लेना, तो जिससे पानी के लिए जगह रहे, हवा के लिए। कई बार हम कह सकते हैं प्रभु जी अभी भर लो, बाहर जाना है, पता नहीं आगे पेट्रोल पंप आएगा कि नहीं आएगा, तो टैंक पूरा फुल कर दो, ओवरफ्लो होने दो, कोई बात नहीं है ना, नहीं मिनिमम कृष्ण दे देते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप भूखे रहेंगे। वृंदावन में कौन भूखा रहता है, राधा रानी का घर है, राधा रानी स्वयं अपने भक्तों के लिए लेकर आए। माधवेंद्र पुरी तो ऐसे भक्त थे, वो भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते गोविंद कुंड के पास पहुंचे और वहां बैठे जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बहुत सुंदर बालक आया, बाबा बाबा तुम यहाँ भूखे बैठे हो, ये लोग कुछ दूध पी लो। बालक इतना सुंदर था कि माधवेंद्र पुरी अवाक दृष्टि से एक मग्न होकर उस बालक को देख रहे थे। उस बालक को देखते ही उनकी भूख और प्यास सब चली जा रही थी, वो जस्ट एब्जॉर्ब सोचे थे कौन है ये बालक, कौन है, इसको देखते ही सब संतुष्टि हो रही। तुमने पूछा तुम कौन हो, तुमको कैसे मालूम पड़ा मैं भूखा हूं, तो बालक ने जवाब दिया मैं यहां पर ग्वाला हूं, ग्वाला, और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, या तो कोई मांग लेता है और कोई नहीं मांगता तो मैं स्वयं लेकर आता हूं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहम। इसका मतलब क्या है कि अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति कर रहा है उसके लिए जो चीज़ चाहिए मैं लेकर आता हूँ, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। योगक्षेम वहम ये LIC में बोलते हैं ना, LIC का एक्चुअली वो गीता से चुराया गया। इसके ऊपर हम केस फाइल कर सकते हैं, ये गीता का श्लोक है, कृष्ण बोल सकते हैं योगक्षेम वहम, बाकी कोई योगक्षेम नहीं कर सकता। जो LIC के डायरेक्टर है उनको अपना स्वयं का भी नहीं कर सकते, किसी और का क्या करें। सिर्फ कृष्ण ही है जो पालक हैं, कृष्ण ही है जो रक्षक हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने किताब लिखी है हरि नाम चिंतामणि, उसमें बताते हैं कि क्या चेतना होनी चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए, कि आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, तुम्ही हमारा पालक, आमी पाल लिया, आई एम मेंटेन, यू आर माई मेंटेनर, आप मेरे पालक हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे रक्षक हो, ये भावना होनी चाहिए। और नेगेटिव भावना क्या है, मैं पालक हूँ, ये देखो मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इनका देखभाल मैं कर रहा हूँ, और ये साधुओं को दान मैं ही दे रहा हूँ, मैं सबका पालन कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन 1000 square feet मेरा है, बाकी सब भगवान का है, लेकिन ये तो मेरा है। ये भावना होने पर नाम जप नहीं हो पाता। लेकिन शरणागति की भावना से आत्म निवेदन तुया पदे कोरी होई न परम सुखी, दुख दूरे गेला चिंता न रोहिला, चौधी के आनंद देखी। आपने सुना है भजन, भक्ति विनोद ठाकुर के भजन, आत्म निवेदन तुया पदे करी, माय लॉर्ड आई सरेंडर टू यू, आपके चरणों में आत्म निवेदन कर रहा हूं, मैं सुखी हो गया। क्यों, दुख दूरे गेला, मेरे सारे दुख दूर हो गए, और चिंता न रही ला, आपके चरणों में आ गया। छोटे बच्चे को क्या चिंता होती, छोटे बच्चे को चिंता नहीं है, स्कूल कैसे जाना है, कैसे पैसे लाने हैं, कैसे भोजन लाने हैं, बस कि जो चाहिए बस उसको मांगना है, माँ के सामने रोना है बस, एक ही मंत्र है, बस इसी। भक्त जानता है सब कुछ भगवान पे छोड़ देना, मांगना भी नहीं है, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, सरेंडर। तो समर्पण की भावना से भगवान की प्राप्ति। तो माधवेंद्र पुरी बस बैठे हुए थे, तो भगवान लेकर आए उनके लिए दूध। अब भगवान बोले कि मैं यहाँ पर ग्वाला हूँ और यहाँ पे कुछ माताएं हैं, वो देखो वो कुएं से पानी लेने के लिए आए और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक बाबा जी बैठे हैं और इसलिए मैं आपके लिए दूध ले आया हूँ। आप जल्दी से ले लो, मैं जा रहा हूँ, आप ले लो आराम से, बाद में मैं लौट के आऊँगा बर्तन के लिए। और बालक चला गया, माधवेंद्रपुर ने दूध पी लिया और रखे हुए थे, वेट कर रहे थे कब आए। बालक आया नहीं, फिर रात को जप करते करते उनको थोड़ी नींद आ गई और नींद में वही बालक फिर से आया, उठो उठो माधवेंद्र पुरी, तुमको पता नहीं है मैं यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर छुपाया गया खेत में, आप जल्दी से आओ और गांव के लोगों की सहायता से कुल्हाड़ी लेके सब खेत को सफाई करके मेरे को बाहर निकालो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, कितने समय से मैं इंतजार कर रहा हूँ, कब माधवेंद्र पुरी आएंगे, कब माधवेंद्र पुरी आएंगे। फिर माधवेंद्र पुरी ने उस विग्रह को बाहर निकाला, जिनका नाम क्या है विग्रह का, कौन से विग्रह, शिनाजी देवी नाथ द्वारा में शरणागति की भावना से व्यक्ति संतुष्ट रह सकता। भक्ति विनोद ठाकुर अपने उदाहरण से सिखाते हैं, हालांकि वो गृहस्थ थे, नौकरी भी करते थे, लेकिन उनका मन भगवान पे पूरा समर्पित। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धन्वंतरी अवतार थी, अवांछित पदार्थों से दूर रखना, फिर ऋषभदेव सर्दी और गर्मी से दूर रखना, शेषनाग बलराम जी मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से बचाए। सबसे बड़ा सर्प क्या है, ईर्ष्या, एनवी, भक्तों के प्रति ईर्ष्या, भक्तों के प्रति अपराध की भावना, इससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती। चैतन्य महाप्रभु सारे अपराधों को माफ कर सकते हैं लेकिन वैष्णव अपराध को नहीं माफ करते। गौरंग महाप्रभु की लीला में एक बार श्रीवास ठाकुर भागवत कथा सुनने जाते हैं, देवानंद पंडित प्रवचन कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा था और श्रीवास ठाकुर दरवाजे के पास बैठे हुए सुन रहे थे और उसमें इतने मग्न हो गए कथा सुनने में कि उनकी आंखों से आंसू आने लगे, शरीर में कांपने लगा और रोने लगे, जमीन पर गिर पड़े। और देवानंद पंडित के सारे विद्यार्थी सोचने लगे, कौन है ये, बाहर निकालो इसको, इसको उठा के बाहर फेंक दिया, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको, हमारी कथा में बाधा कर रहे हैं। देवानंद पंडित की गलती नहीं थी, उनकी गलती यह थी कि उनके चेले, उनके शिष्यों ने गलती की और इन्होंने रोका नहीं। अगर सेवक कोई गलती करता है तो उसका फल स्वामी को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप सब जो इस्कॉन में भक्त हैं, तो जब आप कोई गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो आपके गुरुदेव को और परम गुरु को उसका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे हमारे गुरु को और वैष्णव को तकलीफ हो। तो श्रीवास ठाकुर चले गए लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता चला, वो इतने गुस्से हुए कि देवानंद पंडित पे बिल्कुल कृपा नहीं की। एक बार तो महाप्रभु जा रहे थे, देवानंद पंडित प्रवचन कर रहे थे, महाप्रभु इतने गुस्से थे कि सीधा दौड़ते हुए आसन के पास पहुंचे और देवानंद का गला पकड़ के बोले, ए देवानंद, तुम क्या सोच रहे हो, क्या सिर्फ भागवत से तुमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इतने गुस्से में थे, भागवत को फाड़ने वाले थे, भक्तों ने रोक दिया उनको क्योंकि उनका वैष्णव अपराध था इसमें। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद देवानंद पंडित ने प्रायश्चित किया, वक्रेश्वर पंडित की बहुत अच्छी सेवा की, फिर महाप्रभु के पास फिर से आए और महाप्रभु ने माफ कर दिया। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकारम, अपराध क्षमा कर दिया। और फिर देवानंद पंडित ने पूछा, मैं भागवत पे प्रवचन करता हूँ, आप मुझे बताइए मुझे भागवत में क्या बोलना चाहिए। महाप्रभु ने बताया, जब आप भागवत में बोलते हो तो शुरुआत में भक्ति का वर्णन करो, बिगिनिंग में भक्ति, मध्य में, बीच में भक्ति का वर्णन करो और अंत में भक्ति का वर्णन करो, बस और कुछ करना नहीं। भागवत मतलब भक्ति, और कलयुग में भक्ति मतलब हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस घोर कलयुग में यहाँ पर हर स्टेप पे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो देश में हो, कभी संस्था में भी, हमारे परिवार में भी समस्या रहेंगे। आज के पातात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दुनिया का स्वभाव ऐसा है कि विपत्ति को सहन करना पड़ेगा। जैसे सूरज आता है तो गर्मी आती है, ठंडा सूरज देखा है कभी आपने? काला सूरज होता नहीं है। ऐसी दुनिया का मतलब विपत्ति है। चाहे आप कितने भी करोड़पति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति करते नरकपति बन जाओगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। तो तरीका यह है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग रहना है। जैसे कमल का पत्ता जो है वो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। और वो कैसे संभव है? जब आप हरे कृष्णा मंत्र को गंभीरता से लेते, हर दिन जप करने से पहले आप श्रील प्रभुपाद, गुरुदेव और सब आचार्यों को याद करें और प्रार्थना करें कि वैष्णव ठाकुर एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम। अलोन आई हैव नो पावर टू चैंट, अकेले मैं जप नहीं कर सकता, आप कृपा कर। मैं अक्सर दिन में 10 बजे से 1 बजे प्रभुपाद जी का कमरा खुला होता है, वहाँ बैठ कर मैं जप करता हूँ। तो वैष्णव के साथ जप करने, प्रभुपाद के संग प्रार्थना करके जप कर, इस भाव से कि ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। मेरे एक परिचित है बेंगलोर में, उनके वो डॉक्टर हैं और उनके बेटे को कैंसर हो गया और 21 साल की उम्र में देहांत हो गया। क्या बोल सकते हैं, लाइफ बहुत शॉर्ट है। जीवन अनित्य जाना है सार, ताहे नाना विधि विपद भार, नामाश्रय करी जतन तुम्हें ठाकह अपना काज। जीवन विपत्ति रहेंगे, भक्तों को विपत्ति आती है, भक्तों को भी आती है। फर्क यह है कि भक्त विपत्ति में रहकर भी भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम एक नौका के समान है जो डूबते हुए व्यक्ति को भवसागर पार ले जा सके। तो ऐसी भावना से नाम लेना चाहिए, डूबता हुआ व्यक्ति कैसे रस्सी को पकड़ता है। मान लो आप डूब रहे हो और दूर से कोई रस्सी फेंकता है तो आप रस्सी को कैसे पकड़ोगे? वैसे पकड़ोगे, पकड़ते पकड़ते गिर जाना। ऐसे आप बहुत टाइटली पकड़ोगे, आप ये नहीं देखोगे रस्सी का रंग क्या है, वहाँ जाने के बाद प्रसाद में क्या मिलेगा, अच्छा अभी मुझे बाहर निकलना। तभी संसार में डूब रहे हैं लेकिन हरि नाम की रस्सी है, जो बीट बैग की माला है वो रस्सी है। सच्चे दिल से पुकारना है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं लास्ट में अंत करूँगा धन्वंतरी की एक कहानी बता के। धन्वंतरी मतलब आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, जिनका नाम है मुरारी गुप्ता। आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, हनुमान जी के अवतार है। और एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके क्लिनिक में पहुंच जाते। एक दिन रात्रि को मुरारी गुप्ता भगवान को भोग लगा रहे थे, कृष्णा ये लो, ऐसे चावल और घी मिक्स करके ऐसे हवा में अर्पण कर रहे। उनके पत्नी को समझ में आता है क्या कर रहे, बोले और चावल ले और घी डालो। अगले दिन सवेरे उनके क्लिनिक में पहले पेशेंट चैतन्य महाप्रभु। तो मुरारी गुप्ता ने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है? बदहजमी, इनडाइजेशन। डॉक्टर का बोले कि बदहजमी हो गई तो क्या प्रश्न पूछेंगे, कल रात को क्या खाया था? तो महाप्रभु बोले क्या खाया था, आप ही तो खिला रहे थे, आपके भोजन से मुझे बदहजमी हुई, आपके ही प्रसाद से। महाप्रभु उनका लोटा लिया, बहुत पुराना लोटा था, उसमें से पानी पीने लगे, बोले अब मेरी बीमारी दूर हो जाए। इनके हृदय में कृष्णा गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए मुरारी गुप्त। और वही फिर हनुमान जी के रूप में द्वापर त्रेता में हनुमान जी होते हैं। तो मुरारी गुप्ता किसी को दवाई देते हैं शरीर के रोग के लिए और साथ साथ हरि नाम की दवाई देते। लास्ट में भक्ति विनोद ठाकुर का वाक्य है, एने ची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। बोलते हैं आई ब्रॉट दिस मेडिसिन, चैतन्य महाप्रभु ने मैं दवाई लेकर आया हूँ, वो दवाई है हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और महाप्रभु बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, कैसी दवाई लेना है आप मेरे पीछे बोलिए, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पोड़िया से हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मैं भगवान के चरणों में गिर के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हरि नाम लेने का अवसर दो। तो नाम जप करते समय करने से पहले गुरु और वैष्णव से भीख मांगनी चाहिए, मुझे हरि नाम लेने का अवसर दो। आप दो मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करो भगवान से कि मुझे शुद्ध हरि नाम लेने का अवसर दो, शुद्ध हरि नाम लेकर पवित्र हो सकूं और उसका वितरण कर सकूं। हरे कृष्ण। तो कितने भक्तों को लगता है कि हम कार्तिक में एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं, हाथ ऊपर करें। आप कितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। हो सकता है आप 16 की जगह 32 करें या 25 करें या 20 करें या 18 करें। 15 मत करना, कम मत करना, ज्यादा करना। एक भक्त बोले, प्रभु जी आपने बोला ना एक माला 1000 के बराबर है, तो बस मैं एक माला कर लिया मैंने। एटलीस्ट मेरा रिक्वेस्ट है 25 तो सभी करिए और ज्यादा करें तो और भी अच्छे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।